शंकराचार्य क्या बोलते हैं कि जो आपका सेल्फ है वो अरणि है, वो अरणि है, और इसमें आपको लाइट कहाँ से जलानी है, अपने मेडिटेशन से। यहाँ पे वही चीज़ आ गई, ध्यान से, है ना। किससे जलेगी वो लाइट? मेडिटेशन से। विद द चर्निंग डन बाय मेडिटेशन द फ्लेम ऑफ ज्ञान हाइएस्ट नॉलेज विल मैनिफेस्ट एंड ऑल इग्नोरेंस विल गेट इंसिनरेटेड इन द फायर ऑफ ज्ञान। तो क्योंकि शंकराचार्य जी ने अरणि की बात की है, इसलिए उन्होंने वही वाला एग्जाम्पल देके समझाया है कि जैसे हम एक फ्लेम लेके हम उसको तेज करते हैं, एक जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी और कपूर डालते हैं, जनरली कपूर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर वो तेज हो जाता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं वो काम कौन करेगा? ये ध्यान करेगा। आपको ध्यान करना है जिससे वो अग्नि प्रज्वलित होगी और जिससे आपके सारे जो है अज्ञान जल जाएगा, अज्ञान भस्म हो जाएगा। जो हम बात कर रहे थे ना कचरा पेटी में जो कचरा है, वो उसी को जलाने की बात कर। फिर वो देखो आगे ये बोलते हैं कि हो सकता है आपको ये अब ये विरोधाभासी लगे, क्योंकि पहले मैंने बोला है कि सेल्फ पे तो ध्यान किया ही नहीं जा सकता, है ना। हमने बोला सेल्फ तो सिर्फ हुआ जा सकता है, सेल्फ कैन नॉट बी मेडिटेटेड ऑन। एंड हियर शंकराचार्य इज सेइंग दैट मेडिटेशन ऑन द सेल्फ इज नीडेड टू इग्नाइट द फ्लेम ऑफ ज्ञान। तो ऐसा लग सकता है किसी को कि एक तो बोल रहे हैं कि सेल्फ पे ध्यान नहीं कर सकते, अब बोल रहे हैं ध्यान की ज़रूरत है। ये पैराडॉक्सिकल लग सकता है पर ये है नहीं। अब वो कैसे समझा रहे हैं उसको? जो एक्सट्रोवर्टेड माइंड होता है, जो बाहर मुखी आपका जो मन है, अर्चना जी भी अभी बोल रही थी, जो बाहर की तरफ ध्यान रखता है, वो मन क्या करता है, वो सिर्फ वर्ल्डली नॉलेज, नॉलेज की बजाय भी हम यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे वर्ड यूज करना, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट, जब तक वो बाहर की तरफ जाता रहता है तो मन क्या कर रहा है, बाहर से इन्फॉर्मेशन सूचना इकट्ठी करता जा रहा है, सूचना इकट्ठी करे जा रहा है, करेक्ट। अब ऐसा मन कैसे हम अंदर की तरफ करें, इसको अंदर की तरफ कैसे लेके आया जाए? तो हम क्या कर रहे हैं, असेंशली व्हाट वी आर डूइंग थ्रू मेडिटेशन इज अटेम्प्टिंग टू टर्न द माइंड इनवर्ड्स, है ना। लेकिन माइंड अंदर कब आएगा? देखो माइंड अंदर कब आएगा, जब उसको लगेगा जो बाहर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब वैराग्य हो जाएगा, जब डिस्पैशन हो जाएगा। अभी तक तो हम बाहर वाली चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तभी तो हमारा मुड़ नहीं रहा है, तभी तो हम बाहर ही देखते जा रहे हैं। लेकिन जब हम जानेंगे कि बाहर का इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब हमारा वो इग्नोरेंस मिटेगा, तो हम अंदर की तरफ आएंगे। When the mind understands that the ephemeral world cannot give any lasting happiness, only then will it get disinterested in outer seeking. ये बहुत ज़रूरी होता है, ये हम सब जानते हैं। कोई ना कोई या तो हमारे साथ ऐसी घटना होती है या हमारे ऐसा अनुभव होता है कि हमें लगता है नहीं, अब मुझे बाहर नहीं ढूंढना, बहुत हो गया संसार, है ना, अब मुझे अंदर देखना है अपने। तो हमारा पहला वैराग्य का स्टेप हुआ है तभी हमने अंदर की तरफ मुड़े, नहीं तो हम मुड़ते ही नहीं उसकी तरफ। Now once the mind moves inwards, अब ये क्या बता रहे हैं कि जब आपका मन अंदर की तरफ भी मुड़ गया है तो वो किस पर ध्यान करेगा, किस पर ध्यान करेगा? The fact is, reality is कि वो किसी पर भी ध्यान नहीं करेगा। It won't meditate on anything. When there is nothing external left to meditate on, when there is nothing worldly that the mind thinks about, the mind becomes quiet. And meditation is nothing but the quietude of the mind. तो हम जब बोलते हैं कि अंदर की तरफ ध्यान को ले जाओ, अब देखो अब यहाँ पे confuse मत होइए। कभी कभी जैसे हम अंदर बोलते हैं, अच्छा अपने चक्रा पे focus करो, third eye पे focus करो, है ना, इस चीज़ पे focus करो, उस चीज़ पे focus करो, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि आपका ध्यान अभी कहाँ है, 100,000 चीज़ों में घुमा हुआ है ना, 100,000 चीज़ों में जा रहा है कि नहीं, scattered है, कभी इधर जा रहा है, अच्छा अभी वो टीवी पे ये न्यूज़ आई है तो आपका ध्यान उधर चला गया, अभी बच्चे के साथ ये हो गया तो आपका ध्यान उधर चल गया, सोसाइटी में ये हो गया तो वहाँ गया, मेड ने ये कर दिया तो वहाँ चला गया, है कि नहीं। हर मोमेंट हमारा ध्यान हजारों चीज़ों में है। तो जब हम कह रहे हैं आपके ध्यान को अंदर ले आओ, अपने थर्ड आई पे फोकस करो या अपने इस हार्ट पे फोकस करो, ये भी प्लीज़ नो इवन दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। मैंने पहले क्या बताया, सारे अनुभव, अब हम ये आत्मबोध पढ़ रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, हर अनुभव, हर चीज, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, वो ऑब्जेक्ट ही है, वो बाहर ही है। तो हम इस स्टेप पे वो आ ही नहीं रहे हैं, शंकराचार्य को इस स्टेप से कुछ लेना देना ही नहीं है, कि हम बाहर की बजाय अपने थर्ड आई पे फोकस कर रहे हैं. ही डजंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन ऑल ऑफ दिस. ओके, तो ये हम कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअल जो हम बोलते हैं कि वो अंतर्मुखी हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो संसार में बाहर हैं, चाहे वो शरीर के अंदर हैं, या वो आपकी इमेजिनेशन से क्रिएट कराए गए हैं, उन सब से आपका ध्यान हट जाएगा. और फिर जो बचेगा वो है ध्यान. तब आपके माइंड के पास कुछ बचेगा ही नहीं. ये थोड़ा मुश्किल है समझना, नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, डोंट वरी. फिर हमें सिर्फ इतना समझना है कि पहले हमारा ध्यान बाहर के ऑब्जेक्ट्स की तरफ जा रहा है, अभी हम अपने इंटरनल ऑब्जेक्ट्स में ले आए, जो भी हमें साधना में बताया गया है. जैसे जो यूनिफाइड कर रहे हैं उनको क्या बताया गया है, आपको अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करना है ना. रोज आप अपने हार्ट पे फोकस करते हैं. जब आप क्रिया योग कर रहे हैं तो आपको क्या बताया गया है कि आपको थर्ड आई पे फोकस करना है. तो आपको जो बताया गया है बस आप वही करिए, वही इम्पोर्टेंट है. उसके आगे नेक्स्ट स्टेप आएगा जब आपको इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देखो शंकराचार्य सीधा लास्ट स्टेप लेते हैं, वो बीच में कहीं भी वो पड़ाव नहीं देख रहे हैं. वो बोल रहे हैं तुमको पुणे से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे ऐसा दिखता है. वो लोनावला की डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं रस्ते में. तो अभी हम लोग लोनावला जा रहे हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. अभी हम पुणे में, अभी हम पहले लोनावला जाएंगे, उसके बाद हम बॉम्बे जाएंगे. अब इन्होंने जैसे एक और एग्जाम्पल दिया कि अगर सपोज आपके घर में जो शीशा है वो पूरा मैला हो, गंदा हो, उस पर पूरा धूल जमी हुई हो और आप उसके सामने खड़े होंगे, तो क्या आपकी नज़र आएगी वहाँ पर? नहीं नज़र आएगी, है ना. जब आप उसको साफ कर दोगे तो नज़र आ जाएगी. तो क्या रिफ्लेक्शन क्रिएट हुई है? क्रिएट तो नहीं हुई, रिफ्लेक्शन तो थी लेकिन वो नज़र अभी आ रही है ना, जब माइंड ये शीशा आपका साफ हो गया. ऐसे ही सेल्फ अभी भी है, इट इज़ राइट हियर राइट नाउ, लेकिन वो जो मन में जो कचरा पड़ा हुआ है इतना सारा, वो जो धूल है, उसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा है. तो देखिए पूरा प्रोसेस आत्मबोध में क्या है, उस कचरे को साफ करने का, आपके अज्ञान को हटाने का. आप तो वो जो सेल्फ है वो कहीं बाहर से आना नहीं है, उसको क्रिएट नहीं करना है, कुछ अचीव नहीं करना है, वो ऑलरेडी है, इट इज़ देयर. सिर्फ उसको प्रकट होना है. और वो प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा जमा हुआ है, बहुत ज्यादा अज्ञान है, दैट्स ऑल. ठीक है, देखो वो फिर से यहाँ पे क्लियर कर रही हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, व्हेन यू टर्न योर माइंड इनवर्ड्स यू आर नॉट मेडिटेटिंग ऑन द सेल्फ, यू आर जस्ट क्वाइटनिंग द माइंड. क्लेमिंग टू मेडिएट ऑन गॉड, मेडिटेट होगा, क्लेमिंग टू मेडिटेट ऑन गॉड और द सेल्फ इज लाइक क्लेमिंग टू पोर एन ओशन इन टू अ टीकप. कि आप भगवान पे ध्यान लगा सकते हैं, ये ऐसा कहना है कि आप छोटे से कप में पूरा समुद्र का पानी डाल दें, है ना. इफ अ फाइनाइट ओशियन कैन नॉट बी कंटेन्ड इन अ स्मॉल कप, हाउ विल द इनफाइनाइट सेल्फ बी कंटेन्ड इन योर स्मॉल माइंड. यहाँ पे बताने की बात बार बार यही की जा रही है कि आप मन से उस आत्मन को, उस ब्रह्मन को, उस भगवान को नहीं जान सकते. जैसे कि एक कप में, आप एक कप में ओशन भी नहीं डाल सकते, ये तो इनफाइनाइट ब्रह्मन की बात हो रही है. और आप चाहते हो आपके छोटे से लिमिटेड से माइंड में वो आ जाए, वो कभी नहीं आएगा. बस आपको ये जानना है कि आपका माइंड ऑब्स्टेकल है उसके दर्शन के लिए, है ना, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए. अब देखो वही जो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, जैसे यहाँ पे वो कह रही है, गॉड इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेडिटेटेड अपॉन. दिस इज़ अ रादर डेंजरस स्टेटमेंट टू मेक, नॉट बिकॉज इट इज़ नॉट द ट्रुथ, ऐसा नहीं है, सत्य यही है, बट बिकॉज लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. लिटिल नॉलेज का क्या मतलब है? वही कि इस स्टेटमेंट को हर कोई अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकता है ना. अगर जिसका माइंड जो है साफ नहीं होगा, जिसने माइंड में और अलग तरह की मान्यताएं भरी हुई है, वो सोचेगा अच्छा अगर भगवान पे मेडिटेट कर ही नहीं सकते तो जरूरत क्या है करने की, फिर तो देयर इज नो नीड टू मेडिटेट. जब हमारा मेडिटेशन गॉड पे कर ही नहीं सकते तो मुझे मेडिटेशन ही क्यों करना है, कोई ये भी सोच सकता है ना. जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे गुरु ये बोलते हैं कि जो भी आप पाथ लेते हो वो भी छोड़ना पड़ता है, एंड में वहां पहुंचने के लिए आपको वो भी छोड़ना पड़ता है. उसके बाद वो एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे आपको एक नदी पार करनी है तो आप एक नाव लोगे, है ना. नाव से ही आप इस पार इस किनारे से दूसरे किनारे जाओगे, लेकिन जब आप दूसरे किनारे पहुंच जाओगे तो क्या नाव को अपने सर पे लेके चलोगे? नहीं ना, आप नाव को भी छोड़ दोगे, तभी आप छोड़ के जाओगे। अब सोचो जो इस किनारे पे बैठा है उसको वो बोलता है कि जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हें नाव छोड़नी पड़ेगी। तो बोलेगा अच्छा छोड़नी है तो पकड़नी क्यों है, जब छोड़नी ही है तो मैं पकड़ो ही क्यों? अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बेवकूफी होगी, फिर तो आप इसी किनारे बैठे रहोगे। तो ये सुनकर कि क्योंकि भगवान पे ध्यान नहीं लगाया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान ना लगाएं। ओके, यहाँ पे वो क्लियर कर रही हैं इस चीज को। फिर वो कहती हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आत्मबोध उनके लिए नहीं है जिनको अभी वैराग्य नहीं हुआ है, क्योंकि उनका जो सॉइल्ड माइंड, फिर से वही कचरे वाला जो दिमाग है, वो इसको भी ऐसे इंटरप्रेट करेगा जैसे उनको सूट करता है, है ना? तो ये बहुत डेंजरस चीज हो जाती है। वेदांत टेक्स्ट्स आर नॉट मेंट फॉर दोज हु वांट टू यूज दिस हाईएस्ट नॉलेज एज एन एक्सक्यूज, है ना? जैसे कोई बोले कि अरे ये सब कुछ है ही नहीं तो हमें कार्य क्यों करना है, हमें कुछ करना ही क्यों है, फिर तो हम बैठे हैं और आलसी हो गए। शंकराचार्य कहते हैं, जब ये टूल ऑफ मेडिटेशन, इस ध्यान के अस्त्र को जब सही इस्तेमाल किया जाता है, तो ज्ञान की ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है जिससे सारा का सारा अज्ञान जल जाता है, पूरा अज्ञान समाप्त हो जाता है। नॉलेज डिस्ट्रॉयज इग्नोरेंस। माइंड यू, नॉलेज डज नॉट डिस्ट्रॉय योर ट्रेड्स एंड परवर्ट टेंडेंसीज। If you are deceitful, you will not become honest by listening to ज्ञान। देखो यहाँ भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप सोचो कि ज्ञान मिलेगा तो हमारी सब आदतें बदल जाएंगी, हमारी टेंडेंसीज बदल जाएंगी। इंसान यही सोचता है ना, हम अपनी आदतों से ही परेशान हैं, हम अपने भावनाओं से परेशान हैं, तो हम सोचते हैं वो बदल जाएगा। तो वो भी वो क्लियर कर रही हैं, वो कुछ नहीं बदलेगा, वो तुम्हारा वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ क्या जाएगा, अज्ञान। और अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है कि मैंने अपने आप को ये शरीर मन बुद्धि माना हुआ है और उसी में ही मैं फंसा हुआ हूँ, सबसे बड़ा अज्ञान यही है। अब वो कहती है कि जैसे अगर सपोज किसी चोर ने ये स्टेटमेंट सुना कि आई एम बियॉन्ड एवरीथिंग, नथिंग कैन टच मी, नीदर वर्चुअस नॉर अनवर्चुअस कर्मा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, वो सोचेगा ये तो लाइसेंस मिल गया चोरी करने का, क्योंकि ना कोई अच्छा कर्म होता है ना बुरा कर्म होता है, है ना? अब तो मैं कुछ भी करूं, अब तो मैं मारूं लूटूं कुछ भी करूं, तो इसके लिए बहुत ध्यान देना होता है। माइंड कैन थिंक ओनली ऑफ दैट विच इज इन इट्स फील्ड ऑफ नोइंग, है ना? ये हम समझ गए हैं नोइंग से, जो उसकी फील्ड है, जो उसका संसार है, वो लिमिट में उतना ही जान सकता है। माइंड कैन नॉट मीडिएट अपॉन द सेल्फ। But then it is also true that the mind intellect will have to become integrated so as to gain the knowledge of the self. Hence purification of the mind is essential, dispassion in the mind is essential. It's a disciple's job to purify his mind and it is guru's job to impart gyan to purified mind. The gyan will eradicate all the ignorance. प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो जो धूल है वो हट जाए, जब आपका माइंड प्योरीफाई हो जाता है तो वो अपने आप गिर जाता है, वो अपने आप हल्का हो जाता है, तो उसमें रिफ्लेक्शन सेल्फ की आने शुरू हो जाती है। और जब वो एक बार आनी शुरू हो जाती है तो गुरु उसको पूरा साफ करके पूरा क्लियर कर देता है कि लो अब अच्छे से देख लो। तो डिसाइपल शिष्य का क्या काम है कि अपने मन को साफ करे, 100% नहीं कर पाएगा लेकिन जितना साफ कर सकता है करे, जितना कचरा, बट फाइनल कचरा कौन साफ करेगा, वो गुरु ही साफ करेगा।